अध्याय 27 इज़राइल को दी गई व्यवस्था। यह अध्याय निर्गमन 19:24 पर आधारित है। सिने में पड़ाव डालने के तुरंत बाद मूसा को परमेश्वर से भेंट करने के लिए पर्वत पर बुलाया गया। वो अकेले ही उस खड़ी ढाल और ऊबर खाबड़ रास्ते की चढ़ाई की और उस बादल के निकट आया जो यहोवा की उपस्थिति का अंकित स्थान था। इज़राइल का सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और असाधारण संबंध स्थापित होने को था। उन्हें परमेश्वर के शासन के अधीनस्थ एक राष्ट्र और कलीसिया के रूप में संगठित होना था। लोगों के लिए मूसा का ये संदेश था, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर उठाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। शिविर में लौटने पर मूसा ने इज़राइल के पुरनियों को बुलाकर ईश्वरीय संदेश को दोहराया। उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे। इस प्रकार उसे अपना शासक मानकर स्वयं को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्होंने परमेश्वर के साथ पवित्र वाचा बांधी, जिसके द्वारा विशेष रूप से वे उसके आधिपत्य की प्रजा बन गए। मूसा फिर से पहाड़ पर चढ़ा और प्रभु ने उससे कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए जब तक मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। मार्ग में कठिनाइयां सामने आने पर वे मूसा एवं हारून के विरुद्ध बड़बड़ाने लगते और उन पर दोष लगाते कि वे इज़राइल के लोगों को मिस्र से इसलिए निकाल लाए ताकि उनका विनाश कर सके। परमेश्वर मूसा को उनके सामने सम्मानित करता ताकि वे उसके निर्देशों में विश्वास ला सकें। अपनी व्यवस्था को उच्चारित करने के दृश्य को परमेश्वर ने महिमामयी व भव्य बनाया, जो कि उसकी उत्कृष्ट विशेषता से मेल खाता था। लोगों को इस बात से प्रभावित करना था कि परमेश्वर के कार्यों से संबंधित सभी कार्यों का महानतम भक्तिभाव से आदर करना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और उन्हें अपने वस्त्र धोने देना। वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते देखते सिने पर्वत पर उतर आएगा। इन मध्यवर्ती दिनों में सभी को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए विधिवत तैयारी में समय व्यतीत करना था। उनके वस्त्र और व्यक्तित्व अशुद्धता से मुक्त होना था। जब मूसा उन्हें उनके पापों से अवगत कराए तो उन्हें प्रार्थना, उपवास और विनीतता को समर्पित होकर अपने हृदयों से अधर्म को दूर करना था। आज्ञानुसार तैयारियां की गईं और अगले आदेश का पालन करते हुए मूसा ने पहाड़ के चारों ओर बाड़ा बांधा, ताकि चाहे मनुष्य हो या पशु, कोई भी सीमा लांघकर उस पवित्र स्थान पर नहीं आए। जो कोई भी पहाड़ को छुए वो निश्चय ही मार डाला जाता। तीसरे दिन भोर होने पर जब सब लोगों की आंखें पर्वत की ओर थीं, पर्वत शिखर एक घने बादल ने ढक लिया और बादल स्याह और घना होता गया, जो तब तक नीचे उतरता रीछ जब तक पूरा पर्वत अंधकार और भयावह रहस्य में लिपट गया। फिर तुरही का स्वर सुनाई दिया जो लोगों को परमेश्वर से मिलने को बुला रहा था, और मूसा उन्हें पर्वत की सीमा पर ले गया। गहरे अंधकार में से बिजलियां चमक रही थीं और बादलों का गर्जन आसपास के पहाड़ों में गूंज रहा था, और यहोवा जो आग में होकर सिने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था, और तुरही का शब्द देर तक सुनाई देता रहा और तेज होता गया। यहोवा की उपस्थिति के प्रतीक इतने प्रभावशाली थे कि इज़राइली डर से कांप उठे और प्रभु के सम्मुख अपने मुंह के बल गिर पड़े। यहां तक कि मूसा भी बोल उठा, मैं बहुत डर गया हूं और कांप रहा हूं। इब्रानियों 12:21। अब गड़गड़ाहट थम गई, तुरही का शब्द अब सुनाई नहीं दे रहा था, पृथ्वी भी स्थिर हो गई थी। इस समय सन्नाटा छा गया और फिर परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया, घने बादल के बीच से बोलते हुए, जब वह पर्वत पर स्वर्गदूतों के समूह से घिरा हुआ खड़ा था, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को प्रकट किया। इस दृश्य का वर्णन करते हुए मूसा कहता है, यहोवा सिने से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय ही देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। ये तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। हरेक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। व्यवस्था विवरण 33 आयत 2-3। यहोवा ने स्वयं को केवल विधि निर्माता और न्यायाधीश की महिमामयी तेजस्विता में ही नहीं, वरन अपने लोगों के दयावान अभिभावक के रूप में भी प्रकट किया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल कर आया है। वह जिसको वे पहले से ही मार्गदर्शक और मुक्तिदाता के रूप में जानते थे, जो उनके लिए समुद्र के बीच से रास्ता निकालकर फिरौन और उसकी सेना को हराकर मिस्र से निकाल कर लाया था, जिसने स्वयं को मिस्र के सभी देवी देवताओं से उच्चतर प्रमाणित किया था, वही था जिसने अब अपनी व्यवस्था का उच्चारण किया। व्यवस्था इस समय केवल इब्रियों के लाभ के लिए ही नहीं बताई गई। परमेश्वर ने उन्हें उसकी व्यवस्था के रक्षक और अभिभावक बनाकर उनका सम्मान किया, लेकिन उसे संपूर्ण जगत के लिए पवित्र कार्यभार जैसे माना जाना चाहिए। 10 नियमों के सिद्धांत सारी मानवता के अनुकूल है और वे सभी के संचालन और निर्देशन के लिए दिए गए थे। आधिकारिक, व्यापक व संक्षिप्त 10 नियम मनुष्य के परमेश्वर और अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य की व्याख्या करते हैं और सभी प्रेम के महान मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लूका 10 आयत 27। 10 आज्ञाओं में इन सिद्धांतों को विस्तार से कार्यान्वित किया जाता है और मनुष्य की अवस्था और परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए हैं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यहोवा जो सनातन आत्मविद्यमान, जिसे सृजा नहीं गया, जो स्वयं सबका स्रोत और पोषक है, वही अकेला आदर और भक्ति का हकदार है। अपने कार्यों या अपने संबंधों में परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज को पहला स्थान देने की मनाही है। जो भी हम संजोए रखते हैं, वह परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम को कम करने या उसकी भक्ति में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि वही हमारे लिए ईश्वर बन जाता है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। दूसरी आज्ञा, प्रतिमाओं या प्रतिरूपों के माध्यम से सच्चे परमेश्वर की आराधना की मनाही करती है। कई मूर्ति पूजक जातियों ने दावा किया कि उनकी मूर्तियां केवल आकार या चिन्ह थे जिनके द्वारा ईश्वर की आराधना की जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी आराधना को पाप घोषित किया है। सनातन परमेश्वर की सांसारिक वस्तुओं के द्वारा निरूपण करने से मनुष्य की परमेश्वर के बारे में धारणा अपकृष्ट हो जाएगी। यहोवा की अनंत सर्वोत्कृष्टता से हटकर मन सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि के प्रति आकर्षित हो जाएगा। परमेश्वर के बारे में विचारों के घटने से मनुष्य का स्तर भी गिरता जाएगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। विवाह के रूप में परमेश्वर का उसके लोगों के साथ घनिष्ठ और पवित्र संबंध का प्रतीक है। क्योंकि मूर्ति पूजा आध्यात्मिक व्यभिचार है, परमेश्वर की इसके प्रति अप्रसन्नता को जलन कहना उचित है।
जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। माता पिता के गलत कार्यों के कारण उनकी संतान को कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है, लेकिन यदि वे उनके पापों में भाग नहीं लेते तो उन्हें अपने माता पिता के अपराधों के लिए दंडित नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता के कदमों पर चलते हैं। मीरास और उदाहरण से पुत्र अपने पिता के पापों के भागीदार हो जाते हैं। विकृत प्रवृत्तियां विकृत रुचियां, भ्रष्ट नैतिकता और शारीरिक बीमारियां व पतन पिता से पुत्र में धरोहर की तरह तीसरी और चौथी पीढ़ी तक संचारित हो जाते हैं। इस भयावह सत्य में वह शक्ति अवश्य है जो मनुष्य को पाप के मार्ग पर चलने से रोकती है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। देवी देवताओं की आराधना की मनाही में दूसरी आज्ञा सच्चे परमेश्वर की आराधना का आदेश देती है। जो भक्ति में उसके प्रति निष्ठावान है, उन्हें तीसरी और चौथी पीढ़ी तक ही नहीं वरन हजारों पीढ़ियों तक अनुग्रह का आश्वासन है। लेकिन उसका तिरस्कार करने वालों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसके कोप की चेतावनी दी जाती है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। ये आज्ञा न केवल झूठी शब्दों और सामान्य सौगंधों पर रोक लगाती है, वरन परमेश्वर का नाम सहजता या लापरवाही से उसकी उत्कृष्ट महत्ता के अनादर के साथ लेने की भी मनाही करता है। सामान्य वार्तालाप में परमेश्वर के अचेत उल्लेख से, साधारण विषयों से संबंधित याचनाओं से और उसके नाम को बार बार विचारहीनता से लेने में हम उसका निरादर करते हैं। उसका नाम पवित्र और भययोग्य है। भजन संहिता 111 आयत 9। सभी को उसके गौरव शुद्धता और पवित्रता पर मनन करना चाहिए, जिससे कि उसके उत्कृष्ट चरित्र में उनका हृदय प्रभावित हो और उसका नाम अत्यंत आदर और संजीदगी से लेना चाहिए। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे घर में हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। विश्राम दिन या सबत का एक नई व्यवस्था की तरह नहीं, वरन सृष्टि के समय संस्थापित की गई संस्था के रूप में परिचय कराया गया है। इसे सृष्टिकर्ता के कार्य के स्मारक के रूप में स्मरण रखना है और इसका पालन करना है। परमेश्वर की ओर पृथ्वी और आकाश के रचयिता होने का संकेत करते हुए वह उसे अन्य देवी देवताओं से अलग सच्चे परमेश्वर की विशिष्टता प्रदान करता है। जो भी विश्राम दिन को विधिवत मानते हैं, वे यह दर्शाते हैं कि वे यहोवा के उपासक हैं। इस प्रकार जब तक इस पृथ्वी पर उसकी भक्ति करने वाले हैं, तब तक विश्राम दिन परमेश्वर के प्रति मनुष्य की स्वामी भक्ति का चिन्ह है। 10ों आज्ञाओं में से केवल 4थी आज्ञा में नियम बनाने वाले का नाम और पदवी दोनों पाए जाते हैं। यही एक आज्ञा है जो यह बताती है कि व्यवस्था किसके अधिकार से दी गई है। इस प्रकार उसकी विश्वसनीयता और बंधनकारी शक्ति के प्रमाण के तौर पर उसकी व्यवस्था के साथ उसकी मुहर भी संबद्ध है।
परमेश्वर ने मनुष्य को श्रम करने के लिए 6 दिन दिए हैं और वो चाहता है कि मनुष्य अपने निजी कार्य 6 कामकाजी दिनों में संपन्न करे। विश्राम दिन के दौरान आवश्यकता व दया के काम करने की अनुमति है। रोगियों और पीड़ितों की हर समय देखभाल करनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक कार्यों को टाल देना चाहिए। यशाया 58:13 में लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करें, और निषेधाज्ञा यहीं समाप्त नहीं होती, और अपनी ही बातें न बोले, नबी कहता है, जो लोग सबत के दिन व्यापारिक विषयों पर चर्चा करते हैं या योजनाएं बनाते हैं, उन्हें परमेश्वर व्यापार के वास्तविक लेन देन में व्यस्त ही मानता है। विश्राम दिन को पवित्र रखने के लिए हमें अपने मन सांसारिक वर्ग की वस्तुओं में नहीं लगाना चाहिए, और ये आज्ञा हमारे फाटकों के भीतर सब कुछ को सम्मिलित करती है। घर के सदस्यों को पवित्र घड़ियों के दौरान अपने सांसारिक क्रियाकलापों को अलग रख देना चाहिए। इस पवित्र दिन पर सभी को सहर्ष भक्ति द्वारा एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। माता पिता की एक सीमा तक प्रेम और आदर पाने का अधिकार है, जिस पर और किसी का अधिकार नहीं। उनके सुपुर्द किए गए बच्चों का उत्तरदायित्व परमेश्वर ने स्वयं उन पर डाला है, और ये उसी का आदेश है कि अपने बच्चों की बाल्यावस्था में वे उनके लिए परमेश्वर के स्थान पर खड़े रहें। जो अपने माँ बाप की यथोचित अधिकार की उपेक्षा करता है, वो परमेश्वर के प्रभुत्व का तिरस्कार करता है। पांचवी आज्ञा के अनुसार बच्चों को अपने माता पिता के प्रति विनम्रतापूर्ण, आज्ञाकारी और आदरपूर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके साथ प्रेम और नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, उनके बोझ को हल्का करना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षा करनी चाहिए और उनकी वृद्धावस्था में उन्हें सहायता और सांत्वना देनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें शासकों और धर्माध्यक्षों और उन सबका, जिन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आदर करना चाहिए। इफिसियों 6:2 में प्रेरित कहता है, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इज़राइल के लिए, जो कनान में जल्द ही प्रवेश करने वाला था, ये आज्ञाकारी लोगों के लिए उस समृद्ध देश में चिर आयु के लिए शपथ थी। लेकिन परमेश्वर के संपूर्ण इज़राइल के लिए इसका अभिप्राय विस्तृत है, और वह पाप मुक्त पृथ्वी पर अनंत जीवन का आश्वासन देता है। तू खून न कर। अन्याय के वे सारे कृत्य जो जीवन काल को घटाने के प्रवृत्ति रखते हैं, घृणा और प्रतिशोध की भावना, ऐसा कोई भी आवेग जो दूसरों के प्रति हानिकारक कृत्यों को उकसाता है या हमें दूसरों के अनिष्ट की इच्छा को जागृत करता है। जो अपने भाई से घृणा करे वह हत्यारा है। दरिद्रों और पीड़ितों की उपेक्षा, अतिभोग या अनावश्यक अभाव या अत्यधिक श्रम जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ये सब कम या अधिक छठी आज्ञा का उल्लंघन है। तू व्यभिचार न कर। ये आज्ञा न केवल अशुद्धता के कृत्यों की, वरन उत्तेजना उत्पन्न करने वाले विचारों और अभिलाषाओं की, या कोई भी ऐसा काम जो उन्हें उत्तेजित करे, उनकी मनाही करती है। पवित्रता केवल बाहरी जीवन में ही नहीं, वरन हृदय के गुप्त प्रयोजनों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। जिसने परमेश्वर की व्यवस्था की व्यापक प्रतिबद्धता के बारे में सिखाया, उसी मसीह ने घोषणा की कि कुदृष्टि या बुरे विचार भी गैर कानूनी काम के समान पाप ही है। तू चोरी न कर। इस निषेधाज्ञा में सार्वजनिक पाप व निजी पाप दोनों ही सम्मिलित हैं। आठवीं आज्ञा मनुष्य की चोरी और दासों के व्यापार को दोषी ठहराती है, और दूसरे देशों को जीतने के लिए युद्ध करने की मनाही करती है। ये चोरी और डकैती की निंदा करती है। ये जीवन की गतिविधियों की छोटी से छोटी विशेषता में संपूर्ण समग्रता की मांग करती है। ये व्यापार में ठगी की मनाही करती है, और न्याय संगत ऋण और वेतन की अदायगी की अपेक्षा करती है। ये आज्ञा ये घोषणा करती है कि स्वयं के लाभ के लिए दूसरे की अज्ञानता, दुर्बलता या दुर्भाग्य का लाभ उठाना स्वर्ग की पुस्तकों में धोखाधड़ी के नाम से पंजीकृत है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। किसी भी विषय में झूठ बोलना, अपने पड़ोसी को धोखा देने का उद्देश्य या प्रयत्न इसमें सम्मिलित है। धोखा देने का ध्येय अधर्म को संगठित करता है। आंख की सरसरी नजर से, हाथ के संकेत से, मुखाकृति के भाव से झूठ को सत्य जैसे ही प्रभावशाली ढंग से कहा जा सकता है। सभी साभिप्राय सुविचारित कथन अतिशयोक्तिपूर्ण व भ्रमात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए सुनियोजित कटाक्ष या संकेत, यहां तक कि पथ शभ्रष्ट करने के उद्देश्य से तथ्यों का वर्णन भी अधर्म है। यह सिद्धांत हमें हानिकारक संदेह या मिथ्या प्रस्तुति, लांछन या गपशप, अपने पड़ोसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के प्रयत्न की भी मनाही करता है। सत्य को सुविचारित रूप से दबाना जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे, नवी आज्ञा का उल्लंघन है। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास या बैल गधे का, न किसी को किसी वस्तु का लालच करना। दसवीं आज्ञा स्वार्थी मनोकामना पर, जहां से पापमय कृत्य उत्पन्न होता है, रोक लगाते हुए पाप की जड़ पर ही प्रहार करती है। जो दूसरों का है उसके लिए पापमय अभिलाषा रखने पर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए रोक लगा लेता है, वह अपने सह प्राणियों के साथ गलत काम करने का अपराधी न होगा। महान नियम बनाने वाले के गौरव और सामर्थ्य के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ आग और आग की लपटों के बीच से बोले गए 10 आज्ञाओं के पवित्र सिद्धांतों का यह वर्णन है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के साथ अपनी महिमा और सामर्थ्य का प्रदर्शन इसलिए किया ताकि लोग इस दृश्य को कभी नहीं भूले और नियम के लेखक के पृथ्वी और आकाश के सृष्टिकर्ता से प्रभावित हों। वह सभी मनुष्यों को अपनी व्यवस्था की पवित्रता, महत्ता और स्थायित्व को दिखाना चाहता था। इज़राइली भय से भर गए। परमेश्वर के कथनों की विस्मयकारी शक्ति उनके कांपते हृदयों की सहनशक्ति से बाहर थी। जब उसके सम्मुख परमेश्वर के सत्य आधारित संचालन को प्रस्तुत किया गया तो उन्हें पाप के हानिकारक स्वभाव और पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में उनके निजी दोष का आभास हुआ, जैसा पहले कभी न हुआ था। श्रद्धा और भय से वे पर्वत से पीछे हट गए। उन्होंने मूसा से कहा, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। लेकिन लोग दृश्य को भयभीत होकर निहारते हुए दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। लोगों के मन जो अधर्म और दासत्व से पतित और अंधे हो गए थे, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के व्यापक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से मान्यता देने को तैयार नहीं थे। 10 आज्ञाओं के सिद्धांतों के उदाहरण और प्रयोग देते हुए अतिरिक्त सिद्धांत भी दिए गए, जिससे 10 आज्ञाओं की प्रतिबद्धता पूरी तरह समझी जा सके और लोगों पर लागू की जा सके। इन नियमों को दंडाज्ञा कहा गया, क्योंकि इनका आधार अनंत बुद्धिमता और न्याय था, और न्यायियों को इनके अनुसार न्याय करना था। 10 आज्ञाओं के विपरीत ये मूसा को व्यक्तिगत रूप से दिए गए और उसे इन्हें लोगों तक पहुंचाना था। इनमें से पहला नियम दासों से संबंधित था। प्राचीन काल में कभी कभी न्यायियों द्वारा अपराधियों को दासत्व में बेच दिया जाता था। कुछ एक मामलों में ऋणियों को उनके साहूकारों को बेच दिया जाता था, और गरीबी के कारण लोग स्वयं को या अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। लेकिन एक इब्री को जीवन भर के लिए दास के तौर पर नहीं बेचा जा सकता था। उसकी सेवा की अवधि 6 वर्षों के लिए सीमित थी। 7वें वर्ष उसे स्वतंत्र किया जाना था। मनुष्यों की चोरी, सुविचारित हत्या और माता पिता की आज्ञाओं का विरोध करने पर मृत्युदंड प्राप्त होना था। जिन दासों का जन्म इज़राइली नहीं था, उन्हें दास बनाए रखने की आज्ञा थी, लेकिन उनका जीवन और अस्तित्व पूर्णतया सुरक्षित थे। यदि उसे दांत टूटने जितनी भी अपने स्वामी द्वारा चोट पहुंचाई जाती तो वह स्वतंत्रता का हकदार था। इज़राइली स्वयं अभी तक दास रहे थे, अब जब उनके अधीन दासों को रहना था तो अपने मिस्री स्वामियों के अधीनस्थ होने के समय जिस निर्दयता और बेगारी को उन्होंने सहन किया था, उससे उन्हें सावधान रहना था। उनके दासत्व के कड़वे अनुभव की स्मृति से उन्हें स्वयं को अपने दास के स्थान पर रखने के योग्य बनाना था, जिससे वे संवेदनशील व दयालु बन सकें और दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर सके जैसा कि वे स्वयं के साथ चाहते हैं। विधवाओं और अनाथों के अधिकारों का विशेषकर ध्यान रखा गया और उनकी असहाय अवस्था के बारे में ये विनम्र घोषणा की गई, यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दें तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा, तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। जो परदेशी इज़राइल के साथ जुड़ गए थे उन्हें उत्पीड़न व अन्याय से बचाया जाना था। तुम परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। दरिद्रों से अत्यधिक ब्याज दर लेना मना था। एक निर्धन मनुष्य का प्रतिज्ञा के तौर पर लिया गया वस्त्र या कंबल सूर्यास्त तक उसे लौटा देना होता था। चोरी करने में दोषी पाए गए व्यक्ति को दोगुना वापस करना था। इसके अतिरिक्त न्यायियों और शासकों का सम्मान करना था, और न्यायियों को दंड की आज्ञा को विकृत करने, झूठे कार्य का समर्थन करने और रिश्वत लेने के प्रति चेतावनी दी गई। झूठे आरोप लगाने और मानहानि पहुंचाने की मनाही थी और निजी शत्रुओं के प्रति भी दयालुतापूर्ण व्यवहार करने का आदेश था। फिर से लोगों को विश्राम दिन के पवित्र कर्तव्य का स्मरण कराया गया। वार्षिक पर्वों का प्रयोजन रखा गया, जब राज्य के सभी लोगों को प्रभु के सम्मुख अपने खेतों की पहली उपज का पहला भाग और धन्यवाद की भेंटों सहित इकट्ठा होना था। इन सभी विधियों का उद्देश्य बताया गया था। ये मात्र एक पक्षीय सार्वभौमिकता के अभ्यास से उत्पन्न नहीं हुए थे, इन्हें इज़राइल की भलाई के लिए दिया गया था। प्रभु ने कहा, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, पवित्र परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य। इन आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का दायित्व मूसा पर था और इज़राइल को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के संपूर्ण होने के प्रतिबंध वे 10 सिद्धांतों के साथ, जिन्हें उदाहरण के तौर पर दिया गया था। इन्हें राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव की तरह ध्यानपूर्वक संजोकर रखना था। अब उन्हें यहोवा की ओर से संदेश दिया गया, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इज़राइल के संपूर्ण भ्रमण के दौरान बादल और आग के स्तंभ के रूप में मसीह उनका मार्गदर्शक था। हालांकि आने वाले उद्धारकर्ता की ओर संकेत करते हुए प्रतिरूप थे, लेकिन एक उपस्थित उद्धारकर्ता भी था जो लोगों के लिए मूसा को आज्ञा देता था और जिसे उनके सम्मुख आशीर्वाद के एकमात्र माध्यम के रूप में रखा गया था। पहाड़ से उतरने पर मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। ये प्रतिज्ञा और परमेश्वर के वे कथन जिनका पालन करने को इस प्रतिज्ञा ने उनको विवश किया, मूसा द्वारा एक पुस्तक में लिखी गई। इसके बाद वाचा का सत्यापन किया गया। पहाड़ की तराई में एक वेदी स्थापित की गई और उसके पास ही इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी खड़े किए गए, जो वाचा का उनके द्वारा स्वीकृत होने के साक्षी थे। फिर इस विधि के लिए नियुक्त नौजवानों ने होम बलि और मेल बलि चढ़ाई।
बलि के लहू को वेदी पर छिड़कने के बाद मूसा ने वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। इस प्रकार वाचा के प्रतिबंधों को संजीदगी से दोहराया गया और उनसे सहमत होने की या ना होने की सबको स्वतंत्रता थी। प्रारंभ में उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उसकी व्यवस्था की घोषणा उन्होंने अभी सुनी थी और उसके सिद्धांतों का विस्तृत विवरण किया गया ताकि उन्हें ज्ञात हो सके कि उसमें बहुत कुछ अंतर्निहित है। फिर से लोगों ने एक स्वर में कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। इब्रानियों 9:19-20। अब यहोवा के राजत्व में चुने हुए राज्य की संपूर्ण स्थापना का प्रबंध करना था। मूसा को आदेश मिला, तू हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइलियों से दंडवत करना, केवल मूसा यहोवा के समीप आए। लोगों ने तराई में आराधना की और इन चुने हुए पुरुषों को पहाड़ पर बुलाया गया। उन 70 पुरनियों को इज़राइल के शासन में मूसा का सहयोग करना था और परमेश्वर ने उन पर अपना आत्मा उंडेला और उन्हें अपनी महानता और शक्ति का दर्शन दिखाकर सम्मानित किया। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। उन्होंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति की महिमा देखी। इससे पहले वे इस तरह के दृश्य को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप श्रद्धापूर्ण भय ने उन्हें पश्चाताप के लिए विवश कर दिया। वे उसकी महिमा, पवित्रता और दया पर मनन चिंतन करते रहे थे, जब तक कि उन्होंने उसका सामीप्य न पा लिया जो उनके चिंतन का विषय था। मूसा और उसके सेवक यहोशू को परमेश्वर से भेंट करने के लिए बुलाया गया, और क्योंकि कुछ समय वे अनुपस्थित होने वाले थे, हारून और हूर और उनकी सहायता के लिए पुरनियों को नियुक्त किया। तब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और बादल ने पहाड़ को ढांक दिया और यहोवा के तेज ने सिने पर्वत पर निवास किया। 6 दिनों तक परमेश्वर की विशेष उपस्थिति के प्रतीक के रूप में बादल पहाड़ पर छाया रहा, लेकिन उसके या उसकी इच्छा के संपर्क का कोई प्रकटन नहीं हुआ। इस दौरान मूसा सर्वोच्च के उपस्थिति कक्ष में बुलाए जाने की प्रतीक्षा करता रहा। उसे निर्देशित किया गया था, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे। और यद्यपि उसके धैर्य और आज्ञाकारिता की परख हो रही थी, वह सतर्क रहते हुए थका नहीं और न ही अपने पद को छोड़ा। प्रतीक्षा की ये अवधि उसके लिए तैयारी का और गहन आत्मनिरीक्षण का समय था। परमेश्वर का यह कृपा दृष्टि प्राप्त सेवक भी एकदम से उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकता था और न ही उसकी महिमा के प्रदर्शन को सहन कर सकता था। अपने सृष्टिकर्ता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क के लिए तैयार होने से पूर्व उसे प्रार्थना, ध्यान और आत्मविश्लेषण के द्वारा 6 दिन तक स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करना था। 7वें दिन, जो कि सबत का दिन था, मूसा को बादलों में बुलाया गया। इसराइलियों की दृष्टि में घना बादल छितर गया और यहोवा का तेज प्रचंड आग के समान दिखाई दिया। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। 40 दिन के इस वास में तैयारी के 6 दिन सम्मिलित नहीं थे। 6 दिनों तक यहोशू मूसा के साथ था और उन्होंने मिलकर मन्ना का सेवन किया और उस नदी से जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी पानी पिया। लेकिन यहोशू ने मूसा के साथ बादल में प्रवेश नहीं किया, वह बादल के बाहर ही रहा और मूसा के लौटने की प्रतीक्षा के दौरान भोजपान करता रहा। लेकिन मूसा ने पूरे 40 दिनों तक उपवास रखा। पहाड़ पर रहते हुए मूसा ने ईश्वरीय उपस्थिति के विशेष प्रकटन हेतु मंदिर के निर्माण के लिए निर्देश प्राप्त किए और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। निर्गमन 25:8। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। 3री बार विश्राम दिन के पालन की आज्ञा बताई गई, क्योंकि मेरे और तुम लोगों के बीच ये बात जान रखो कि यहोवा हमें पवित्र करने वाला है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कामकाज करेगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। निर्गमन 31:17। परमेश्वर की आराधना के लिए अस्थाई उपासना गृह के तत्काल निर्माण के लिए निर्देश दे दिए गए थे और अब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि जो लक्ष्य दृष्टि में था वो परमेश्वर की महिमा थी, और आराधना के लिए स्थान की आवश्यकता के कारण उनका विश्राम दिन के दौरान निर्माण कार्य करना न्यायोचित था। उन्हें ये गलती करने से रोकने के लिए चेतावनी दी गई। परमेश्वर के इस विशेष कार्य की पवित्रता और अत्यावश्यकता के कारण से भी उसके पवित्र विश्राम दिन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब के बाद लोगों को उनके राजा की स्थायी उपस्थिति से सम्मानित किया जाना था, और मैं इसराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वो तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। निर्गमन 29:45-43। ये आश्वासन मूसा को दिया गया। परमेश्वर की इच्छा के अवतार और परमेश्वर के अधिकार के प्रतीक के रूप में मूसा को 10 आज्ञाओं की एक प्रति दी गई, जो पत्थर की 2 पटियों पर परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से अंकित किया था। व्यवस्था 9:10। निर्गमन 32:15-16। 3 नहीं, उस पवित्र स्थान में सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठापित करना था जिसे निर्माण होने पर राज्य द्वारा आराधना करने के लिए सदृश स्थान होना था। दासों के वर्ग से इसराइलियों को अन्य सब जातियों से ऊपर उठाया गया था, ताकि वे राजाओं के राजा की विशेष निधि ठहरे। परमेश्वर ने उन्हें संसार से अलग किया था ताकि वो उन्हें एक पवित्र प्रभार सौंप सके। उसने उन्हें अपनी व्यवस्था का संग्रह स्थान बनाया और उसका उद्देश्य था कि उनके द्वारा वो मनुष्यों में स्वयं के ज्ञान को संरक्षित रखे। इस प्रकार अंधकार से आवृत जगत पर स्वर्ग के प्रकाश को फैलना था और लोगों को मूर्ति पूजा को पीठ दिखाकर जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए निवेदन करती आवाज को सुना जाना था। अपने विश्वास में सच्चे होने पर इसराइलियों की जगत में एक शक्ति बनने की संभावना थी। परमेश्वर उनका बचाव होता और उन्हें सब अन्य जातियों से ऊपर उठाता। उनके माध्यम से उसका प्रकाश और सत्य प्रकट होता और प्रत्येक प्रकार की मूर्ति पूजा से ऊपर उसकी आराधना की श्रेष्ठता के उदाहरण के तौर पर हम उसके बुद्धिमत्तापूर्ण और पवित्र शासन में आगे होते।